जोसेफ ने, और दोनों जो हैं अब आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं मिक्स टीम शूटिंग इवेंट में। अब उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो हम आपको कल बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो स्विमर्स हैं अहमद दुरानी और जहां आरा नबी, वो भी नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सके। दुरानी फिनिश 25th ऑफ 25 स्विमर्स, और जहां आरा जो थी विमेन्स 200 फ्री स्टाइल के अंदर शी फिनिश 26th ऑफ 30 स्विमर्स। ऐसे है पीसीबी जो है जी, उसने आज नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स उनको आज अनवेल किया है, और नई कैटेगरीज जो है उसके अंदर काफी चेंज, यानी नई नई कैटेगरीज के अंदर काफी चेंजेस किए हैं। तो अब डिटेल्स तो पूरी नहीं आई है, लेकिन इनसाइड सोर्सेज के मुताबिक नसीम शाह जो है, बिकॉज उनकी बहुत दाजुविज्म की इस वक्त फॉर्म है, तो मे बी वो भी कैटेगरी वन के अंदर आ सकते हैं। शादाब खान को डाउनग्रेड किया जा सकता है। पीसीबी जो है वो काफी लंबी जो है कंसल्टेशन कर रहा था सेलेक्टर्स और कोचिज के साथ, इंक्लूडिंग गैरी कर्स एंड जेसन गिल्सबी, और लेकिन वो कह रहे हैं जी सैलरीज जो है अनचेंज रहेंगी। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान जो है लग रहा है कि वो कैटेगरी ए में रहेंगे। मोहम्मद नवाज और इमाम वसीम जो है उनको शायद जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट है उसमें ना रखा जाए। पीसीबी जो है उसने वैसे भी जितने भी ये बड़े स्टार्स थे उनको एनओसी टू प्ले इन वेरियस ग्लोबल लीग्स उसमें देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए आपको पता चल ही गया होगा कि ग्लोबल T20 में भी पाकिस्तान से बड़े स्टार्स नहीं आए हैं, और अब वो प्लान कर रहे हैं कि इन प्लेयर्स को जो है घर के अंदर रखा जाए, और आने वाली सीरीज जो घर में होने वाली है उसके लिए इनको ट्रेन किया जाए। ये चाहते थे कि इनके जो प्लेयर्स हैं इनके जो हैं वो रैंक्स भी डाउनग्रेड किए जाए, लेकिन गैरी कर्स्टन ने एडवाइस किया कि नहीं, आप अपनी जो है ये प्लान इसको रिकंसिडर करें, उस पर पीसीबी ने किया था। इसके साथ साथ इमामुल हक, फखर जमान, शाह मसूद जो है उनको कैटेगरी बी में ही रखा जाएगा, और की चेंजेस जो है वो की जाएंगी कैटेगरी डी के अंदर। आज पाकिस्तान ने डिफीट किया इंडिया को इन 15th एशियन मेंस अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में इन बहरेन। उन्होंने डिफीट किया इनको 3-0 स्कोर लाइन से। इन्होंने सेट किए अपने पॉइंट्स 25-20, 29-27, 25-15, तो एज अ रिजल्ट इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती। कनेडा जो है जी हमारा, वैसे तो उसने पेरिस ओलंपिक्स में 5 मेडल जीते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्कैंडल्स जो हैं इसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि इन्होंने एक इनके जो कोच हैं उन्होंने ड्रोन एक उड़ाने की कोशिश की थी न्यूजीलैंड के ट्रेनिंग सेशन पे, जब कनाडा के मैच से पहले, और फिर कनाडा ने इसको 2-1 से जीता था, जिसके के अंदर कहा गया था कि इन्होंने ओलंपिक कोड की ब्रीच की है। लेकिन फिर भी आज ओलंपिक विमेन्स फुटबॉल टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल में 2-1 से फ्रांस जो होस्ट है उससे जीती है, और कनाडा जो है वैसे भी रेनिंग चैंपियन है, तो ये उसके लिए एक अच्छी खबर थी। इसके अलावा जो कोच बेव पीटरमैन है उनको सस्पेंड किया गया है बाय फीफा, लेकिन इसके साथ साथ जो है फेंसर एलेनोर हार्वी, उन्होंने आज ब्रोंज जीता है, कल जीता था फॉर विमेन्स इंडिविजुअल फॉयल। क्रिस्टा डेगुची जो है उन्होंने कनाडा का पहला गोल्ड मेडल जीता था इन अंडर 57 कैटेगरी इन जूडो, और कनाडा के जो डाइवर्स हैं नेथन जोम्बर और मरे एंड रायन वीन्स, उन्होंने भी ब्रोंज जीता है मेन सिंक्रोनाइज 10 मीटर में। एक और आज इन्होंने गोल्ड जीता है, अब आई एम मिसिंग दैट, आई डोंट नो व्हाट वाज अनदर गोल्ड, 5 हाँ कनाडा ने 5
स्विमिंग में जीता,
हाँ स्विमिंग में आज एक और बेस्ट, यस और भी जीता है, तो अब 5 है इनके पास मेडल्स ऑल टुगेदर कनाडा के पास। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट अगेन पेरिस ओलंपिक्स, लेकिन इसमें जो टेनिस प्लेयर्स हैं नोवाक जोकोविच, उन्होंने बड़ी ही क्रशिंग डिफीट दी है राफेल नडाल को 6-1, 6-4 इन ओलंपिक्स। और आपको पता ही है कि ये मैच मैक्सिमम देखा गया दो टाइटन्स जो हैं उनके बीच में था, और देवर फेसिंग ईच अदर फॉर द 60th टाइम। हो सकता है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फाइनल टाइम एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, लेकिन आज का मुकाबला भी बहुत ही दाजू था, और जोकोविच जो है उसने नडाल को हराया। तो ये थी जनाब हमारी आज की सारी
गर्म गर्म खबरें हैं, ये थी खबरें जने जी, क्योंकि ओलंपिक्स की एंड में आपने बात बताई तो पॉइंट्स टेबल बता देते हैं कौन सी रैंकिंग क्या है। जनाब हम चल रहे हैं टोटल नंबर्स के हिसाब से मेडल्स, तो यूएस है नंबर 1 पर 3 गोल्ड 8 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज के साथ 20 मेडल्स। फ्रांस है होस्ट कंट्री, 5 गोल्ड 8 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज और इनके टोटल मेडल्स हैं 16। तीसरे नंबर पर जापान, 6 इनके गोल्ड हैं, 2 इनके सिल्वर हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं और इनकी मेडल की तादाद हो गई है 12। कनाडा की अभी बात की शाजी ने खबर सुनाई, टोटल 5 मेडल्स हैं हमारे पास जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज हैं। इंडिया नंबर 20 पर, और आपको पता है कि इंडियन प्लेयर 10 जो वुमेन्स हैं मनु भाकर साहिबा उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में संडे को ब्रॉन्ज मेडल लिया था, तो इंडिया का खाता भी जो है वो खुल गया था संडे को और ब्रॉन्ज मेडल लिया, तो ये 20th नंबर पर इंडिया इस वक्त मौजूद है विद ब्रॉन्ज मेडल। तो ये थी अब तक की ओलंपिक्स की खबरें, पाकिस्तान की ओलंपिक्स की खबरें शाहजी जी ने सुना दी।
मुझे बड़ी हैरत हो रही है, 240 मिलियन का कंट्री है या 220 मिलियन की आबादी,
22 करोड़ खेल,
हाँ, तो उसके अंदर 7 प्लेयर इन्होंने भेजे हैं ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ।
बस ऐसे ही हालात हैं शाहजी जी, लेकिन आप देखें, आप इंडिया की देखें, कंपेयर करें, इंडिया की कितनी आबादी, 1.3 बिलियन, ठीक है, इन्होंने टोटल भेजे 117 प्लेयर।
हाँ, तो आपको भी एटलीस्ट चलो 25-30 तो भेजनी चाहिए।
तो हमने क्या किया, हमने सात प्लेयर, 117 का 7% अगर निकालें तो 8% कुछ बनता है, तो उन्होंने 7 प्लेयर भेज दिए।
हाँ,
उस चक्कर में देखते हुए,
यानी और आपको कोई टैलेंटेड मुल्क में नजर नहीं लोग आ रहे?
टैलेंट तो बहुत है शायद जी,
हाँ,
लेकिन प्रॉब्लम है उसको वो कोई सामने नहीं लाने वाला है, फैसिलिटीज नहीं है बेसिकली। हाँ, लोगों के पास, माँ बच्चों के पास, बहुत ये जितना एथलीट्स अभी हम सामने देख रहे हैं, जंपिंग हो रही है, थ्रो हो रहा है, आप अक्सर मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देखता हूँ जो बलूचिस्तान के बच्चे हैं खासकर, जो ये एक खास सेक्स है, मुझे भी जबान से नहीं आ रहा, जितने भी हजारी बच्चे हैं,
हजारी हैं
वो सब
हजारा कम्युनिटी से,
हजारा कम्युनिटी से इतने टैलेंटेड हैं, वो इतना अपना सोशल मीडिया पे और टिकटॉक्स पे वीडियो बनाकर डालते हैं, छलांगे मार रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, फुटबॉल खेल, हर स्पोर्ट्स में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सिस्टम नहीं है, उनको ऊपर आने नहीं देता। अभी भी आप देखें ना, 25 में से 25 नंबर पर हमारा तैराकी भाई जो है वो आ गया 25 नंबर पे। मुझे बताएं कि आपके पास,
आपने क्या ट्रेनिंग उसको करवाई थी भाई?
टॉप 3 का डाटा आपके पास पहले से होगा,
होगा
पर उन्होंने ये 20 मीटर्स की जो स्विमिंग है उन्होंने 1.5 सेकंड में पूरा किया।
हाँ,
ये रिकॉर्ड है, फर्स्ट
करेंगे,
तीसरे नंबर वाले का 120 है, एग्जाम्पल
ले,
तो अब आप उसको भेजेंगे ना जो 119 आएगा या एटलीस्ट 120 आएगा,
बिल्कुल
उसके लिए तैयारी करेंगे,
उसके लिए तैयारी करेंगे,
या कि आप जो है 149 वाला जो कि 24वें नंबर पे है, तो आप 25वें पर आ जाएंगे। समझ नहीं आता कि इतने बड़े मुल्क
डेटा होने के बावजूद,
इतना डेटा सब ओपन डेटा,
एवरीथिंग इज ऑन वेबसाइट ना, एवरीथिंग,
हर एक रिकॉर्ड ओपन है।
बस करें कि स्विमिंग का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या वो आ जाएगा,
आप बच्चों को बचपन से उस पर ट्रेनिंग कराएं कि भाई अभी पिस्टल आप खबरें सुनाने दे, दोनों लड़के वो लड़की,
यानी मुझे हैरत है आमिर, मुझे हैरत है कि ये जो हमारे पठान हैं आंखों पे पट्टी बांध के और परिंदे जो हैं उनको गोलियां मारते हैं, उनसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन होगा, उनमें से कोई नहीं इनको नजर आया।
प्रॉब्लम ट्रेनिंग की है और राइट टैलेंट। अब जैसे भी बात हो रही थी, 7 प्लेयर्स के साथ स्टाफ जो है वो 15 स्टाफ के,
स्टाफ 15।
अब आप सोचें टोटल हर एक के साथ दो दो कम से कम हो गया, अगर
उल्टा करना चाहिए था कि 15 प्लेयर्स होने चाहिए थे और
सात लोगों के साथ कम से कम डेढ़ आदमी दो आदमी जो है वो कोचे और दूसरी चीजें जा रहे हैं, ठीक है, जरूरत है चले जाएं, लेकिन बहुत दुख होता है समटाइम ये सुन के, पाकिस्तान जैसा टैलेंटेड मुल्क जहां, और स्पोर्ट्स इसलिए ज्यादा तवज्जो देते हैं कि स्पोर्ट्स से आप लोगों के जो एक एंजाइटी है, एक नेगेटिविटी है बच्चों के अंदर,
निकल जाती है ना,
वो निकलती है।
आप जब बच्चे को एक देते हैं कि भाई इतने बड़े वर्ल्ड लेवल पे जाके तुम एक मेडल मुल्क के लिए जीत के लाओगे, है ना, तो इससे बड़ी और क्या बात है। यानी आप सोचो ना, उस बच्चे का प्राइड का आलम देखो जब कॉमनवेल्थ में वो कोई मेडल जीतेगा या ओलंपिक्स में जीतेगा।
हमारे नदीम साहब ने गोल्ड मेडल लिया, वो थ्रो जेवलिन थ्रो करते हैं एथलीट, अभी भी सारी जो है ना वो बस वो क्या, इस वक्त मकसद पाकिस्तान का क्या, अरशद किसी तरीके से गोल्ड लेकर आ जाए, बस
ट्रेनिंग उसको नहीं देनी, फैसिलिटीज उसको नहीं देनी,
उसको कुछ भी नहीं देना, बस वो बेचारा जो भी करना है उसने खुद ही करना है, वो बेचारा ये क्या होता है, ये रॉ टैलेंट होता है। लेकिन ये तरीका क्या होता है कि आपने 4 निशाने मारे उसमें से एक लग गया ना, ये तरीका नहीं होता,
प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग,
आप एक स्टाफ दें उनको, एक ट्रेनिंग दें उनको, हो सकता है ऐसे 10 अरशद नदीम पैदा कर लेंगे,
एग्जैक्टली
10 मेडल लेकर आ जाए,
एग्जैक्टली,
लेकिन आपने काम ही नहीं करना,
काम ही नहीं,
आपका जो है वो लूट मार और दूसरी चीजें, पॉलिटिक्स गर्म है ना बेसिकली, स्पोर्ट्स तो कहाँ तबाह हो गए, सोचे ना।
अच्छा, कल मैं सुनाओ बताऊंगी आमिर, आपको पता है कि आज से कुछ 6 महीने पहले मैंने बताया था कि वो जो हमारे लियारी के बच्चे हैं उनको उठाकर लेकर गए हैं ना वो फुटबॉल की ट्रेनिंग देने के लिए, वो दे आर डूइंग वेरी वेल, उनकी कल मैं आपको सारी एक खबर सुनाऊंगी,
बिल्कुल सुनाइएगा। और देखें, गम की बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी क्या उरूज है,
सबसे ज्यादा
आज भी हमारे जो ओलंपियंस, कई ओलंपियंस जो हैं वो यहाँ विजिट करते हैं, मिलते हैं, शहबाज जूनियर साहब यहीं होते हैं, आज आपका निशान भी नहीं है, آج آپ کا نشانی نہیں یہ یہ لمحہ فکر ہے. بالکل آپ اس کو سوچیں,
نیشنل گیم تھی ہماری,
کہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں اپنے اسپورٹس کو. جہانگیر خان, جہاں شیر خان, ہم جب سب سے دیکھے جہاں شیر خان, آگے جہانگیر خان ختم ہو رہے تھے, جہاں شیر خان جو ہے وہ ان ہو گئے تھے. مجال ہے کہ وہ دنیا کا پلیئر ان کو ہرا دے. ٹورنامنٹ شروع ہوتا تھا نا تو ذہنی طور پہ تیار ہوتے تھے کہ بھائی یہ تو جہانشیر خان نے جیت لینا.
جب تک جہانگیر ہے جہانگیر نے تو کسی کو نہیں جیتا,
جہانشیر نے بھی جیتی تھی.
جہانشیر نے پھر بھی کوئی ایک دو کسی اور کو چانسز دیے, لیکن جہانگیر نے تو ایک بھی چانس نہیں دیا کسی کو, کبھی کوئی نہیں جیتا اس کے آگے. تو
یہ پلیئر تھے, ان کو آپ نے ضائع کر دیا, آپ نے ان کو آگے لایا نہیں, آپ نے ان کو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں پرووائڈ کیا.
تمہیں پتا جب بیک ٹو بیک تین میچز جیتا نا جہانگیر خان, تو یہ سارے گورے جو ہیں دیکھنے کے لیے آئے کہ ہم وہ دیکھیں تو صحیح کون سی دھانسو فیسلٹیز ہیں جو ان پاکستانی پلیئر اس لڑکے کو ملی ہوئی ہیں کہ یہ ہارتا ہی نہیں ہے نہ تکتا ہے. جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کتے بھی ادھر جا رہے ہیں تو نالے بھی گندے بہ رہے ہیں اور وہاں سے گزر کے بےچارا وہ بےچارا.
آپ کو پتا اسٹوڈیو آئے تھے جہانگیر خان صاحب, وہ اسٹل از اے ہمبل مین, نتھنگ کہ یار میرے کندھوں پہ اتنے میڈلز ہیں یا اتنی وینز ہیں, نتھنگ.
نہیں نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ فیسلٹیز کالم یہ تھا کہ جس گندے راستے سے وہ تو وہ حیران رہ گئے وہ گورے, انہوں نے کہا یار ادھر سے یہ ہیرا نکالا ہے آپ نے, ادھر یہ آپ کے ٹریننگ کرتا ہے اس گندے سے اس کے اندر آپ کے, اور یہ علاقہ دیکھو اور یہ سارا کچھ دیکھو. تو بس وہی ہے کہ ہم قدر نہیں کرتے جو ہمارا ٹیلنٹ ہے نا اس کی, ہم بالکل قدر نہیں کرتے کیونکہ ہم نے گھوڑے اور گدھے دونوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے. ہم جس وقت تک گھوڑے کو نہیں نا پہچاننا شروع کریں گے, جیسے کہ عربز نے کرنا شروع کیا ہوا ہے. عربز جو ہے نا, آپ کیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یو اے ای, قطر, بحرین, سعودی, اب یہ کیوں اتنی زیادہ یہ ترقی کر رہے ہیں؟ بیکاز انہوں نے اب ٹیلنٹ کو پہچاننا شروع کیا. آپ کو پتا
ہے بہت ٹائم لگ گیا اس ٹیلنٹ کو پہچاننا.
ہاں بہت ٹائم لگ گیا,
کرتے تھے لوگوں کے ساتھ,
کرتے تھے لیکن سمجھ گئے نا, پھر سمجھ گئے,
کہتے تھے ہم ہی سپیریئر ہیں.
ہاں لیکن پھر سمجھ آ گئی نا, یہ تو یہ چیز تو جاپان کے اندر بھی تھی نا. جاپان کہتا تھا ہم سب سے زیادہ سپیریئر ہیں, اور پھر کیا ہوا جب سیکنڈ ورلڈ وار میں ہارے, پھر اس کے بعد کیسے واپس آئے؟ پھر انہوں نے کہا نہیں جی کام کرنا ہے بس, چپ کر کے, اور ٹیلنٹ جو ہے نا اس کو آپ نے جگہ دینی ہے اور اس کو آگے لے کر آنا ہے. تو وہ ہے, تو یہ چیزیں ہمیں بھی سمجھنی پڑیں گی. گھوڑے اور گدھے کو آپ ایک جیسے ٹریٹ نہیں کر سکتے. گھوڑے کو آپ جس وقت تک گھوڑے کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے, آپ کے وہ گھوڑے ضائع ہوتے جائیں گے, وہ مرتے جائیں گے.
بالکل جناب, اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. ٹاپ آف دی آور کا بریک ہو گیا, اس سے پہلے ہمیں بریک کر دیا ہو جائے تو ٹاپ آف دی آور کا بریک لے لیتے ہیں. میں عامر احمد اور شازیہ ملک آپ کے ساتھ رات 9 بجے تک ہیں. اگر آپ نے ہمارے ساتھ جڑنا ہے, آج اسپورٹس پہ بات کریں گے, تھوڑا اولمپکس چل رہا ہے کہ کیا کس طریقے سے ینگ بچوں کو, پاکستانی بچوں کو یہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی, ابھی خواجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ سائیکلسٹ ہیں, کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. تو اسپورٹس پہ آج بات کرتے ہیں, ینگ بچوں کو کیسے لے کر آنا چاہیے, کہاں غلطی ہو گئی, کیا کمی ہے, تو اس سلسلے میں بھی آج آپ سے بات کریں گے. کچھ پالیٹکس پہ بھی کر لیں گے, مجھے پتا ہے نا پالیٹکس کے بغیر وہ رات کھانا ہضم نہیں ہوگا رات کا, تو وہ بھی کر لیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے سر. محبت ہے آپ لوگوں کی سب ہمارے ساتھ جڑتے ہیں. تو ہمارا نمبر 4166201778. ٹاپ آف دی آور کا بریک لیتے ہیں اور پروگرام میں واپس آتے ہیں.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یگس ٹاؤن ٹورانٹو.
برمپٹن سڑکاں, فٹپاتھاں اتے بس سٹاپ دے سردیاں دے رکھ رکھاو دے کانٹریکٹ دا نویکرن کرن جا رہا ہے اتے اے جاننا چاہندا ہے کہ شہر دے نواسی انہاں سیواواں دا بھگتان کرن لئی تیار ہن. پرنام سروپ نواسیاں دے لئی ٹیکسز ودھ سکدے نے, پر ساریاں پرواراں نوں اے سیوا دا لابھ نہیں مل سکدا. سارے فٹپاتھاں نوں صاف کرن لئی سالانہ $2.6 million دا خرچہ آؤندا ہے. ڈرائیو وے تو برف صاف کرن لئی اس دی قیمت $19.6 million پرتی سال ہوے گی. تے اپنے سجھاؤ دین لئی اج ہی وزٹ کرو brampton.ca/engage.
ٹرک کا گھومتا پہیا کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن. آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے. ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک, ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک لیو تھرو آؤٹ انٹیریو, نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ون اسٹاپ شاپ. اب تیسری لوکیشن ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان نیپنی. کوئک ٹرک لیو 519-622-0660. quicktrucklube.com.
دس دن ہو گئے تینوں سنیہا لائے نوں, پر تو اگنور ہی کر رہے ہیں. ہونا فون اگنور ہو جائے گا, گولیاں اگنور نہیں ہونی. آپ دے آپ دے پروار دا دھیان رکھی, پھر نہ کہیں بھی دسیا نہیں.
جسٹن ٹروڈو دی سافٹ آن کرائم پالیسیز دی وجہ نال ایکسٹارشن رائز تے ہے. لبرلز نے ایکسٹارشن تے پینلٹیز وی کٹا دتیاں ہن. اس دوران پیئر پولیف ایکسٹارشن دے اگینسٹ بل لے کے آئے سن, اتے جسٹن ٹروڈو تے جگمیت سنگھ نے اس دے خلاف ووٹ کیتی. ہن صرف کامن سینس کنزرویٹوز ہی کینیڈا دا ماحول ٹھیک کر سکدے نے. براٹ ٹو یو بائے پیئر پولیف اینڈ کینیڈاز کنزرویٹوز.
کیا آپ کے گھر اور آٹو انشورنس کی رینول ہو رہی ہے؟ क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
چاندنی
بینکویٹ ہال
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز Sound System Innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye. 437-218-8734. ChandniHalls.ca.
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours,
दांतों का कोई भी मसला हो या करानी हो डेंटल क्लीनिंग, डॉक्टर फयाज एंड एसोसिएट्स आपकी पहली चॉइस। पैराडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, डेंटल इम्प्लांट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड मच मोर। वार्म एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जहां आप अपनी जबान में अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं। आपके पास डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं, कोई मसला नहीं। स्कारब्रो में एक और मिसिसागा की दो लोकेशंस पर आपको सर्व करते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल कीजिए 9052325678 Mississauga 4167579999 Scarborough।
क्या आपकी फैमिली में मसाइल चल रहे हैं और हालात आपको लेके जा रहे हैं डाइवोर्स की जानिब, या आपका प्यारा बिना विल लिखे या विल लिखकर आपको छोड़ के जा चुका है? विल के मुतालिक कोई भी काम हो या आपको चाहिए ट्रस्टीशिप सर्टिफिकेट, या आपकी रियल स्टेट क्लोजिंग नजदीक है और आप हैं एक तजर्बेकार लॉयर की तलाश में, इन तमाम कामों के लिए आपकी मदद के लिए एक बाएतमाद इदारा मलिक लॉ ऑफिस, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स मोहम्मद अतीक मलिक आपकी तमाम कानूनी मसाइल में आपकी रहनुमाई करेंगे। GTA में दो लोकेशंस, मिसिसागा 168 क्वीन स्ट्रीट साउथ यूनिट 201, इन स्कारब्रो 1825 मार्कम रोड यूनिट 205। कॉल टुडे मलिक लॉ ऑफिस 9052914559052914455।
BNK proudly brings you Big Pilgrim Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street, West Midway. Mark your calendars for August 31st and September 1st. Day one will feature the incredible and legendary day live in concert with full band. Enjoy free parking at admission. For sponsorship, booth booking, and limited VIP tickets, contact us at 416-897-1683 or info@bnkevents.com.
वेलकम बैक और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साज़ो आवाज़ 770 एम डायल पर। मैं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ वही जनाब जो न्यूज सुनाती हैं शाजी मलिक साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ। सर जी एक बार फिर खुश आमदीद आपको। शाजी जी कैसी हैं?
वैसे ही हम मतलब मिनट के अंदर क्या हमने चेंज हो जाना है, मतलब कोई चेंज आ जानी है।
अच्छा फिर आप खामोश बैठे, मैं नंबर बता दूं जी आप हमारे जुड़ने का नंबर क्योंकि आपकी कोई देखो जब मैंने इसलिए पूछा होता है ना ब्रेक में बंदे का कोई लॉटरी निकल गई हो, कोई तब्दीली आ गई हो जिंदगी में, बाहर आ गई हूँ।
अच्छा बाहर यानी कि वो हमने जो है ओलंपिक्स में एक उलटबाजी खा ली,
एक मेडल जीत लिया आपने।
हाँ मेडल जीता हुआ है, इधर बैठ के
भी एक मेडल होना चाहिए।
हाँ
ओलंपिक्स में
कसम से
जो जितनी खराब न्यूज सुनाए
जितनी गंदी जिसकी
जितनी सबसे ज्यादा जो है ना
गंदी खबरें
तो आप तो जीत जाएंगे। वो धमाके कितने होते हैं गंदी से मुराद के चार ही लोग यहाँ मर गए, गांधी जी ने जो क्या है वो राहुल गांधी ने जो है ये कर दिया।
हाँ, है? तो वही नहीं गंदी खबरें कह रही हूँ ना कि जिससे लोगों का तो दिल दुख रहा है।
बस दिल दुखी खबरें
हाँ, दुखी खबरें गंदी खबरें वही हैं जिससे लोगों का रोना आ रहा है लोगों को सुन सुन के और लोगों का दिल चाह रहा है यार शाजिया मलिक दासी सर तो
बस गोल्ड है।
पता अभी तक मुझे लग रहा है हमारी जो हिंदुस्तानी भाई है सुन नहीं रहे हमारी खबरें वरना अभी तक मेरा सर फूट चुका
है। ऐसा कहकर राहुल गांधी की वजह से
कि ये राहुल गांधी का शायद साइड ले रही है और बीजेपी की। भाई हम तो खबरें सुनाते हैं,
खबरें साइड क्या ली।
हाँ और ये भी हम आपको बता दें कि इंडिया की खबरें। अच्छा आज मैं ये क्लैरिफाई कर दूंगी। एक मुझे ना कोई आज से कुछ छह महीने पहले आया था सौदिया जी आप हमेशा इंडिया के खिलाफ बोलते हो। अच्छा ये मैं आपको बात बता दूं कि हिंदुस्तान की खबरें किसी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर से या किसी कैनेडियन न्यूज़पेपर से मैं नहीं लेती, या तो कभी कभी जो कोई ओपिनियन पीसेज होते हैं वाशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स से लेती हूँ। डेली बेसिस पे जो हिंदुस्तान की खबरें होती हैं वो सिर्फ इंडियन अखबारों से मैं लेती हूँ।
बिल्कुल ठीक,
सिर्फ इंडियन अखबारों से, नॉट इवन फ्रॉम इंडियन सोशल मीडिया।
क्या बात है।
हाँ सिर्फ इंडियन जो आपके अखबार हैं दो चार बड़े, एक आपका वायर है, एक आपका जो है द प्रिंट है, आपका हिंदू है, हिंदू है आपका जो न्यूज़पेपर है आपका जो है तो और पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है आपका, इनसे मैं आपकी सारी खबरें इंडिया की लेती हूँ। कोई किसी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर से इंडिया की खबर मैं बिल्कुल नहीं लेती या किसी कैनेडियन न्यूज़पेपर से ही ना। लाइक आई जस्ट सेड कि ओपिनियन पीसेज कोई होते हैं जो वाशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में आते हैं वो मैं लेती हूँ बट नॉट अदरवाइज। तो इसलिए अगर कोई ये समझ रहा है कि जी मैं हिंदुस्तान के ये आपके अपने न्यूज़पेपर्स में ये पब्लिश हुई हुई खबरें हैं जो मैं लेती हूँ।
नहीं यहाँ फेवर और मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ है किसी के फेवर। आप मुझे एक बात बताएं अगर अभी कितनी आप पाकिस्तान की खबरें सुनाती हैं।
हाँ।
हमेशा जो है कहीं ना कहीं मसले मसाइल रहते हैं। अब हैं तो यही न्यूज आती है ना।
हाँ,
क्या करें।
हाँ, हाँ।
सरसब बाग तो वहां नहीं उग रहे।
हाँ।
कि भाई दूध की नदियां बह रही हो खबरें। हाँ। सुना दें आके शैलजी जी बोलेंगे भाई वो एक नई दूध की नहर जो है वो चलना शुरू हो गई है पिशावर से लेके कराची
तक। अभी बलोचिस्तान में जो धरना हो रहा था गवादर में जिसमें लोग मर गए ये खबर नहीं हमने दी भाई। लोग
जो हो रहा है वो ठीक है। आज भी जो है वो क्या है वो टीएलपी के जो है।
हाँ, वो टीएलपी उनको अरेस्ट किया,
अरेस्ट कर लिया।
हाँ,
कि वो धमकियां दे रहे थे जस्टिस साहब को।
हाँ, चीफ जस्टिस साहब
जो है वो है,
जो है तो
हमारे वजीर आजम साहब की थोड़ी तबीयत खराब है आजकल, बीमार हो गए उन्होंने ईरान का।
उनके बारे में तो मैं हमेशा कहती हूँ उनकी तबीयत
खराब रहती है।
उनको जो आसिम साहब कहते हैं कहते हैं यस सर
ईरान का दौरा जो है।
हाँ बिल्कुल यस सर कहते हैं वो।
पोस्टपोन कर दिया उन्होंने कहा तो नहीं जाएंगे।
फिर
दूसरी तरफ आप देखें जो जमात इस्लामी का करेक्टर पिछले दिनों में आया है
ये नईम साहब जो है ना
जैम
क्या बंदा है क्या करेक्टर।
जमात इस्लामी शाजिया जी हमेशा से जमात इस्लामी का प्रॉब्लम था। हाँ। अगर आप पीछे जाए ना तो जमात इस्लामी ने यूं समझ लें कि कराची पे रूल किया था
70s
में रूल किया था। मतलब यूं कहते हैं ना कि किंग पार्टी अगर कराची की कोई थी तो वो जमात इस्लामी थी। अब हुआ क्या, जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है जिसमें आपने देखा है कि इनका जो लीडर है यानी अमीर जो इनके बनते हैं वो उनके बाकायदा इलेक्शन होते हैं। जितनी जमहूरियत जमात इस्लामी में, मुझे नहीं लगता कि किसी और जमात में होगी। मैम जमहूरियत की बात
नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल सही है 100%।
अब इशू जो मुझे लगता है पर्सनली वो एक सिम्बॉलिक होगी, अगर ये जमात इस्लामी की जगह ये अगर मजहबी एलिमेंट इसमें अच्छा है वो नाम का ही क्यों है, अगर इसको ये निकाल देते ना और अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करके अपनी चीजों को आगे बढ़ाते पॉलिटिकली, आप रिलीजियसली जो करना है वो आप ऑफ द एयर चीजें करते रहे, जो आपका थॉट है वो चीजों को, आपकी टीम एक अलग हो उसकी, आपकी पॉलिटिकल टीम एक अलग हो और आपकी रिलीजियस टीम एक अलग हो, जो आपका एक विंग हो वो रिलीजियसली काम करता हो लेकिन जो आपका विंग पॉलिटिकल है वो पॉलिटिकल काम करता है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ही पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव पार्टी जिसे कहेंगे ना, हाँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी है।
सही कह रहे हैं।
हालांकि लोग बहुत इस वक्त हो जाएंगे नहीं पीपल्स पार्टी में भी बहुत से ऐसे प्रोग्रेसिव लोग, लेकिन वो एक जगह अटक के रह गई है ना। अब मुझे बताएं कभी आप सोच सकते हैं कि कयादत जो है वो भुट्टो फैमिली के अलावा कहीं जाएगी?
या
नवाज शरीफ जो है शरीफ फैमिली के अलावा कयादत जो है कहीं और जाएगी?
यानी कि ना तो पीपल्स पार्टी में ना पीएमएलएम में, इनके अलावा ना कोई पढ़ा लिखा है नहीं इनकी पार्टियों में। भुट्टो जो है बस
पढ़े लिखे होंगे,
कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ऐसा बना दिया,
ऐसा बना दिया
कि हमारे खिलाफ हमारे अलावा तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं ना लीडर है कोई हमारी पार्टी में,
इतना कॉम्पिटेंट ही नहीं है,
कॉम्पिटेंट ही नहीं है,
हम चेयरमैन बनाते हैं।
यानी कि अब आप जो है आपकी बहुत बड़ी बात होती, जैसे कि अब आप कांग्रेस देखें, कांग्रेस भी जो है वो कितनी बड़ी पार्टी थी ना और कब से है कांग्रेस है, और उसको चलाते कौन थे? पंडित चलाते थे, पहले जनाब मोतीलाल नेहरू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, फिर उसकी जो है वो बेटी, पंडित चलाते थे। इस वक्त उस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? एक दलित है, राइट? पीपुल्स पार्टी जो कहती है जी हम बड़े जो हैं वो प्रोग्रेसिव हैं और ये हैं वो हैं, आप सिंध के अंदर रहते हैं ना, आप सिंध में से अगर अपनी पार्टी का चेयरमैन किसी हिंदू को बनाते ना तो फिर पता चलता कि यस आप लोग जो हैं प्रोग्रेसिव हैं। इसी तरह दूसरी जो पार्टीज हैं ये जो पीएमएलएन वगैरह हैं, पीएमएलएन की बेस क्या है? पंजाब है ना, पंजाब में से अगर आप अपना जो चेयरमैन किसी सिख को बनाते ना तो फिर लगता कि हाँ जी आप प्रोग्रेस में, यानी आपको लग रहा है
बनाए अपने अलावा किसी को बनाए,
हाँ अपने अलावा भी बनाए, लेकिन कहने का मतलब ये भी है कि किसी और को भी बनाए, मतलब इंडिया जो है एक हिंदू देश आप कहते हैं ना उसको हिंदू देश है, उसका प्रेसिडेंट अक्सर जो है मुसलमान रहा है, तो इसी तरह जो है कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर जरा थोड़ी सी चेंज लाए।
जमहूरियत नहीं है,
हाँ जमहूरियत नहीं है, आप समझते हैं कि या तो मेरा खानदान ही सबसे ज्यादा लायक है या सिर्फ मुसलमान ही दुनिया में तीर मार सकते हैं और कोई तीर नहीं मार सकता। जो आपके माइनॉरिटीज हैं जैसे दूसरे मुल्कों में, और भाई हमारी एग्जाम्पल ले लो, हम लोग जो इधर कैनेडा के अंदर आए हुए हैं हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं है मुसलमान है ना, एक क्रिश्चियन कंट्री के अंदर मुसलमान मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, हिंदू है, सिख है, दिस इज प्रोग्रेस, दिस इज डेमोक्रेसी। तो आपके मुल्क में भी आपकी पार्टी का हेड कोई सिख क्यों नहीं हो सकता, कोई हिंदू क्यों नहीं हो सकता, यू नो? तो कहने का ये मतलब है कि जैसे बाकी दुनिया में, जैसे हम पाकिस्तानी बड़ा बोस्ट करते हैं, ओ जी मेरा तो जो चाचे का बेटा है व्हाइट हाउस में अब बैठा हुआ है, चाचे का बेटा व्हाइट हाउस में मुसलमान है ना एक क्रिश्चियन कंट्री में, जिसको उन्होंने टैलेंट को समझते हुए, आप भी ऐसा ही करो, आपकी पार्टी में भी कोई माइनॉरिटी जरूर टैलेंटेड होंगे, आप उनको ऊपर आने दो, आपकी पार्टीज को रन कर रहे थे, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी। नईम साहब जो है ना, मैं इतना कोई इम्प्रेस हूं नईम साहब से, तुम्हें पता है कि जिस वक्त ये कराची के अंदर इन्होंने कहा जी कि नहीं मैं इलेक्शन हारा हूं, पीटीआई वाला जीता है, हालांकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इसको जिताया हुआ था, इनको डिक्लेयर किया होता कि ये, उसने कहा कि नहीं ये बिल्कुल झूठ है, मैं बिल्कुल नहीं जीता, मैं हारा हूं, पीटीआई वाला जीता है। भाई उस दिन से मेरे दिल में इस आदमी के लिए कदर है, कैरेक्टर जो है ना, एक कैरेक्टर एक चीज होती है, कैरेक्टर होना चाहिए थोड़ा सा आपका।
देखिये इन्होंने इस वक्त शर्जी जिस तरीके से ये पीडीएम सब कर रहे थे, पीटीआई भी बहुत टाइम से काम कर रही थी, आप देखें इन्होंने विद इन टू और थ्री डेज गवर्नमेंट को घुटनों पर बैठा दिया, विद इन टू थ्री डेज इन्होंने निजाम को ही बिल्कुल जो है ना सोचने में मजबूर कर दिया कि जिस तरीके से, खासकर देखें इशू शुरू हुआ वहां से जहां बिल्स इलेक्ट्रिक बिल्स से बेसिकली कहानी सारी शुरू हुई, जिस तरीके से लोगों के घरों के बिल ज्यादा आ रहे हैं, फिर ये आईपीपीस के मसले हम देख ही रहे, इन्होंने धरना दिया, ठीक हो गया, इन्होंने कहा कि वे धमकी दी कि अगर ये धरना नहीं रुकेगा तो हम पूरे मुल्क में जो है वो
जो मैं भी सुना रही
हूं आपने सुना दिया। अब दूसरी तरफ सुन खबरें ये आ रही हैं, आपके पास भी जाहिर है आपके जराए मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, मैं तो दोस्त यारों से कभी कभी पूछ लिया कि बातें जो है ना वो चेंज लाने की अभी से शुरू हो गई है, जो बातें हो रही थी सितंबर अक्टूबर में जो है या अगस्त सितंबर अक्टूबर में,
मैंने ही ये कहा था यहाँ पे, मैंने भी कहा था यहाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जो चेंज है ये आप देख रहे ना, ये आपको सितंबर तक आपको चीजें चेंज होती हुई नजर आ जाएंगी।
तो वो अब जमात इस्लामी ने जो जिस तरीके से लीड लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जमात इस्लामी का भी रोल फेडरल में, वो मुझे ऐसा है कि वो नजर आ रहा है।
और आज जुलाई है ना, जुलाई में आपके सामने मैं फिर से और लोगों के सामने मैं फिर से कह देती हूँ, नवम्बर में इलेक्शन है ना अमरीका के, नवम्बर में आएंगे ना, आप देख लेना, आप मेरी बात लिख के रख लो, अब दिसंबर में चेंज आएगी पाकिस्तान के अंदर भी, और हो सकता है वो चेंज इलेक्शन की सूरत में आए, हो सकता है दिसंबर में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो।
ठीक हो गया,
हाँ जी
देखते हैं,
हाँ
अल्लाह करे चेंज आ जाए।
मैंने पहले भी कहा था कि अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर में चेंज आएगी, और अब तो मैं कह रही हूँ कि हो सकता है आपके इलेक्शन आ जाए।
ये बातें ये भी हो रही थी, आज सुबह भी मेरी बात हो रही थी, और कुछ लोगों ने जो है वो बाकायदा तौर पर तारीख देकर कहा कि इमरान खान रिलीज हो जाएगा। अब मैं भी उसको एयर पे नहीं बताना चाहता, लेकिन बातें ये हो रही हैं कि भाई इमरान खान, मैंने उनसे ये कहा कि रिलीज, आप कहते हैं चले रिलीज हो जाएगा, मैंने कहा कि यार ये किसी न किसी और चक्कर में फिर धर लिए जाएंगे, जेल से बाहर नहीं आएंगे। होता है ना जैसे कि एक मुकदमे से रिलीज कर दिया भाई कोर्ट ने, खत्म हो गया,
छोड़ते तो हैं वो, लेकिन
कितने छोड़ते
लेते हैं, कितना छोड़ते हैं वो
हैं, उनको करते हैं भाई बरी कर दिया, ये वाले केस से फना हो
गया,
चौथा खाना से डिसमिस किया इससे, लेकिन क्या है कि वो को दूसरा केस बना देंगे। अब जो है वो मेरे ख्याल से कादर ट्रस्ट वाला मामला जो है वो इनके जो है इस वक्त प्रॉब्लम में आया हुआ है।
तुम सोचो आमिर की कितनी स्टुपिडिटी है, वो जमीन जो है उसके ऊपर एक इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ है
जी,
उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं
जी,
तो जमीन इसकी बीवी कैसे खा गई है? इमरान खान की बीवी ने वो जमीन कैसे खाई है भाई, या इसने कैसे खाई है? उसके ऊपर एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं यार।
ये तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है,
ओ माय गॉड,
ये पाकिस्तान पॉलिटिक्स,
देयर इज एनी लॉजिक और नॉट,
कोई
लॉजिक है कि नहीं है कुछ दुनिया में?
पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में लॉजिक की कोई जगह नहीं है।
क्यों नहीं है भाई?
दोनों कोई जगह नहीं है, कम से कम पाकिस्तान पॉलिटिक्स में लॉजिक्स की कोई जगह नहीं होती, किसी किस्म की भी लॉजिक्स की कोई जगह नहीं होती। यहाँ सेंटीमेंट्स उस वक्त के जो बने हुए, जो सही है या गलत है, बस अपनी बात को जो है वो आगे बढ़ाना है। अब दूसरा क्या कहता है क्या नहीं कहता, आई डोंट केयर, मेरी बात जो है वही सही है, और जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। अभी हम ये स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, मतलब तकरीबन शादी जी मैं पढ़ रहा था, 35 साल हो गए, 35 ईयर्स हो गए पाकिस्तान जो है वो ये मेडल गोल्ड जो है नहीं ला सका। अब बात करें भाई, 35 सालों में जो है वो हुकूमत चाहे डिक्टेटर चलाता रहो 10 साल, 10-15 साल आप भी चलाते रहे, तो यार ऐसा कहां गलती हो गई, क्या आप नहीं कर रहे? आप सारा इल्जाम जो है वो कह रहे थे, जो वर्दी वाला आया था ना उसने मुल्क को 10 साल पीछे कर दिया, सर जब आप आते हैं तो कम से कम 20 साल पीछे चला जाता है। मैं किसी से कोई मोहब्बत नहीं, किसी से कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं, चाहे 10 गालियां 10 चीजें मुशर्रफ साहब की भी गलत होंगी और हैं
जी, मुशर्रफ साहब की 50 चीजें गलत होंगी, लेकिन मुशर्रफ साहब ने आईएमएफ का प्याला तोड़ दिया था उसकी गवर्नमेंट ने, उसने कहा था अब हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे जी जरदारी साहब ने फिर लंबे जो है वो कर्जे ले लिए आईएमएफ से। आज जरदारी साहब से आप पूछते क्यों नहीं है कि भाईजान वो कर्जे जो आपने लिए थे वो सारे का सारा पैसा आईएमएफ का किधर गया? पूछने को तैयार नहीं है। जरदारी साहब का तो नाम लो तो इधर लोग जो है बंदूके लेके
चले, वो कर्जे तो शायद फिर भी कहते हैं ना, मैं कहता हूँ चले, एक प्रेसिडेंट था ठीक है, जरदारी साहब ने काम किया, उनके पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, फिर नून लीग आए, फिर इमरान खान भी आए। मेरा कहने का मैं तो सवाल ये पूछूं आज, क्योंकि आज ये टॉपिक भी हमारा है आजकल इसी पर जो है, वहां पाकिस्तान में भी ज्यादा बात हो रही है, वो सिर्फ सवाल इन सब से पूछ लिया जाए, कोई भी पूछ ले, आप पूछ लें तमाम लीडरान से कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें 1994, 1995, 1996 ये आईपीपीस के जो प्रोजेक्ट हैं इनमें कितने फॉरेन कंपनीज हैं, कितनी जो है वो लोकल कंपनीज हैं, और अगर लोकल कंपनीज हैं तो सिर्फ उनके ओनरशिप के नाम बताते हैं।
हाँ, ये पूछो ना जी नवाज शरीफ साहब की से, पूछे ना
आपने कितने कर्जे लिए, सब छोड़ दें, सब माफ है,
महंगे आपने
सब माफ है सारे कर्जे सर, सिर्फ ये बता दें जो डाका आपकी कंपनीज ने उनके नाम जरा रिलीज कर दें, मीडिया पर रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें,
जिन्होंने पैसे बनाए,
जिन्होंने 1996 से अब तक,
और इतने महंगे आपने जो है वो मुआहदे किए हुए, सारी दुनिया से सबसे ज्यादा महंगे आपने वो मुआहदे किए हुए, दुनिया जो है वो 54 का दे रही है वो जो है, और आप 1 रुपया पर यूनिट के ऊपर आप दे रहे हैं उनको, यार हद होगी। और चाहे वो बिजली जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पैसे आपने उनको देने हैं, US डॉलर्स में और आपने देने भी हैं उनको, चाहे वो कोई हम कोई करें या ना।
हाँ, वो कहते हैं कि जी हमारी कैपेसिटी है, फर्ज कर लें वन किलो मेगावाट और आप यूज कर रहे हैं इसको तकरीबन 800 मेगावाट, यानी आप 200 मेगावाट का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हम बिजली क्योंकि हमारी कैपेसिटी जो है 100 मेगावाट है, हम तो उसी के चार्ज करेंगे,
हम उसी के चार्ज करेंगे, मतलब है कोई सेंस
आप यूज कर, क्योंकि आपका इश्यू है आप यूज नहीं कर रहे, हमारी तो कैपेसिटी जो है वो 100 मेगावाट।
देखो ना जरा, मतलब ये मुआहदा जिस वक्त लिखा जा रहा था तो ये कौन मुआहदा कर रहा था?
ठीक है
जी, हमारे मुल्क में जी इस वक्त शॉर्टेज, मैं मतलब कह रही हूँ जो मुआहदा लिख रहा था,
जो जमात इस्लामी की मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी नहीं, ये धरने की, ये बेसिकली इनको ठंडा करना इस वक्त इसलिए जरूरी बन गया है क्योंकि इस वक्त जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है जो इस पर बिजली पर, बिजली के बिलों पर,
टैक्सेस पर,
टैक्सेस पर आवाज उठा रही है, और इनको इनको पता है कि अगर जरा सी भी अवेयरनेस बढ़ गई, ये आवाज उठ गई और ये पब्लिक की चीजें ऐसी हो गई कि पब्लिक बाहर निकल आएंगे, भाई आप कुछ ना करें, हमारे बिल भी कम ना करें, सिर्फ आप ये बता दें कि बाहर की कंपनीज कितनी इन्वॉल्व है इसमें, जिनके मुआहदे हुए हैं,
कितना पैसा दे रहे
हैं, कितना पैसा दे, और लोकल कौन कौन सी कंपनीज है और उनके ओनर्स कौन है,
कौन है?
बस ये कॉम
आज उसने कह दिया ना, उसने कहा कि हमारी डिमांड्स ना मानी तो फिर ये सिर्फ रावलपिंडी तक नहीं रहेगा,
पूरे मुल्क में,
ये फिर पूरे मुल्क में जाएगा ये प्रोटेस्ट,
तो ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। तो देखें अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है आज भी, लेकिन वैसे गुड न्यूज तो अच्छी थी जो आपने भी बताई, अभी और पीटीआई के अरकान्स जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 93 और तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाएं। देखिए जिसका जो हक है ना, मेरा मानना हमेशा से रहा, जो भी हकदार है उसको हक मिलना चाहिए।
हाँ भाई बिल्कुल,
ये अगर ये नहीं आप करेंगे, ये निजाम अगर नहीं करेंगे तो आप फिर नुकसान में रहेंगे।
अब एक बात है, देखो इस ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चार लोग हैं, ठीक है, माजिद भाई हैं, अरफा जी हैं,
निशान
है, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल, तुम है, मैं हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम्हें मैं पसंद ही नहीं हूँ तो जबरदस्ती कैसे कहेंगे कि भाई, तो वही बात है ना, पाकिस्तान में
पसंद नहीं।
पाकिस्तान में अगर आप लोग पसंद ही नहीं हो पाकिस्तानियों को तो आप कैसे जोर लगा रहे हो कि नहीं हम तुम्हारे पर रूल करेंगे? यार आपको वोट ही नहीं दिया पाकिस्तानियों ने,
बस
पाकिस्तानियों ने वोट ही नहीं दिया आपको,
सिंपल।
आप ही मरे जा रहे थे ना, इलेक्शन इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा, ये होगा, दूध का दूध पानी का पानी, तो दूध का दूध पानी का पानी तो हो गया, लोगों ने आपको वोट से नहीं दिए, लोग नहीं चाहते पीपल्स पार्टी, लोग नहीं चाहते पीएमएलएन, लोग नहीं चाहते आप लोगों को, लोग पीटीआई को चाहते हैं, हु द हेल आर यू टू यू नो रूल फोर्सिबली।
लेकिन शायद ये बताऊं प्रॉब्लम क्या है, ये कौम ना बहुत मासूम है, यकीन करें बहुत मासूम
है,
बहुत आप, मैं
हमारे पंजाबी में कहते हैं लाई लग,
लाई लग,
हाँ लाई लग, यानी कि जिस तरफ लगाएं आप लग जाती
है। हाँ। अच्छा, ये तकरीबन कोविड के बाद से, अगर मुझे एग्जैक्ट याद है 2019 या 2020 फैब का टाइम था, क्योंकि कनेक्ट रहता हूँ पाकिस्तान से, लोग बातें होती रहती हैं, यकीन करें ये हालात थे उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट, ठीक है, ये हालात थे और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये तमाम आप पुराने अखबार भी उठा के देख लें,
लोग नाराज थे पीटीआई से,
लोगों की ये हालत थी कि इमरान खान अभी जाए,
बहुत नाराज थे, बहुत नाराज थे,
अभी जाए, कल नहीं अभी, ये हालात थे। ये प्रॉब्लम हमारे ये कि हम किसी को चलने नहीं देते ना, देखिए अगर आपको इमरान खान से चाहे 10 इख्तलाफात हो आप चलने देते? मैं 3.5 साल हो गए थे ना, 1.5 साल और रह गया,
1.5 साल और रह गया
मुश्किल से,
लेकिन साल भर नहीं था,
नहीं जीतता
वो, नहीं जीत, वही तो मैं कह रही हूँ, उसने जीतना ही नहीं था, अगर आप उसको उसकी टीम,
इमरान खान के आप सारे, मैं जितनी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आप अखबार उठा लें, सारा सेंटीमेंट उठा लें, उस वक्त की हालत देख लें मुल्क की, और जो आवाम का जो एक सेंटीमेंट था, जो आवाम का एक परसेप्शन क्रिएट हो गया
ना, जीतते ये बिल्कुल,
वो अगर आप साल भर के बाद,
डेढ़ साल के बाद जो वक्त था उसका, उसके बाद होते ये नहीं जीतते,
देख लेते क्या होता,
पीटीआई लूज कर जाती सारा।
आज इमरान खान के अलावा कोई नाम लेने के लिए तैयार ही नहीं है।
हाँ हाँ बिल्कुल,
ये हालात
आपने हीरो फिर बना दिया ना उसको बहुत ज्यादा।
देखिए इससे क्या होगा कि जब भी किसी के ऊपर जुल्म होगा, चाहे वो आप हो या इमरान खान हो, आवाम उसके साथ खड़ी है, इससे यही साबित हुआ ना कि जिस पर जुल्म होगा, जिस पर ज्यादा
और बिलावजह का जुल्म, यानी कि बिलावजह
जुल्म तो बिलावजह ही होता है ना, सही जुल्म कहाँ होता है?
हाँ, नहीं यानी कि कभी तो आपका कसूर भी होता है ना, तो फिर आपको
वो सजा होती है, जुल्म नहीं, वो सजा
तो आपको पकड़ लिया, नहीं आपको जुल्म लग रहा है ना कि वो यार साडा बड़ा लीडर सी, चाहे उसने 10,000 डाके मारे, नहीं जी यार साडा लीडर सी इसको पकड़ लिया, बंद कर देता है, जुल्म हो रहे, तो आप समझ रहे हो ना वो जुल्म हो रहा है, लेकिन उसने काम गलत किए हैं। लेकिन अगर किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं है,
मतलब वही बात है कि चोर ने चोरी की, वो पकड़ा गया और उसकी पिटाई लग रही है, तो वो कह रहे हैं यार
क्यों बेचारे को मार रहे हो, क्यों जुल्म कर रहे हो उस पर इतना ज्यादा,
ये चोर है।
हाँ एग्जैक्ट। एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज,
राइट? बिल्कुल सही है,
वो है कि जब उसने गलत काम किया और उसको पकड़ लिया, लॉ ने मारा पीटा, तो आप कह रहे हैं हाय बेचारे नाल बड़ा जुल्म किया है, तो वो जुल्म नहीं है, वो सही सजा है ना उसकी। जैसे कि आप कहते हैं ओ जी जो है वो सऊदी अरेबिया में बड़ा जुल्म है, लोगों का सर काट देते हैं और हाथ काट देते हैं, इसीलिए रात के 2 बजे भी आप ज्वेलरी से भरे हुए अकेले फिर रहे होते हो,
किसी
मजाले कोई देख ले, वो हाथ लगाना तो बड़े दूर की बात है, आपको कोई आपको देख
जाए। सवाल
आमिर, अभी मैं जब उम्रे के लिए गई थी, हालांकि हमारा जो होटल मक्का के अंदर था वो भी बिल्कुल हरम के सामने था और मदीना में भी बिल्कुल हरम के सामने था, राइट? ऐसे था, लेकिन तुम खुद सोचो जरा कि कभी कभी तो बेटे मेरे जो थे वो थक जाता था ना, वो बच्चे भाई थक जाते हैं अपनी जरा पेस पे भी वो चलते हैं। आप यकीन करें कि सुबह जो 5 बजे की फजर की नमाज है वो भी मैं, और आपको पता है वहां पे लाखों बंदा आया होता है, लाखों बंदा आया होता है ना, हाँ आया होता है, ये तो नहीं है कि उधर 2-4 बंदे। सुबह 5 बजे भी मैं अकेले जा रही हूँ, रात के 2 बजे भी अगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ पढ़ के नफल वगैरह मुझे आना है, मैं अकेले आ रही हूँ और घूम घूम, कभी कभी क्या होता था हालांकि बिल्कुल सीधा रास्ता था,
वॉक करने कभी
वॉक करने चले गए, क्योंकि शहर पूरा रोशन होता था ना, आमिर जाग रहा होता था ना, तो मैं कहती थी कि भाई अब इधर से निकल के हरम और हरम से निकल के वापस क्या जाना है, अब जरा घूम फिर के जाओ, है घूम फिर के, कभी कभी तो घूम फिर के रात के 2 बजे जो है हम जा रहे हैं मजाल, और पैसे तो रखे होते थे ना जाहिर है कि कभी कभी रास्ते में कोई जानवाज नजर आ गई, कोई तस्वीर नजर आ गई, कुछ नजर हो गया, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आप अब फिर ढूंढेंगे अगले दिन वो, क्योंकि टाइम भी इतना ज्यादा नहीं था, तो पैसे भी रखे होते थे, वो कोई मजाल है कोई आपकी तरफ देख जाए, कोई आपको कुछ कह दे, बल्कि मेरा बेटा कहता, क्योंकि मैं क्या करती थी, क्योंकि वो पाउच पहना होता था ना, तो पाउच जब मैं खोलती थी तो मैं पूरे ऐसे वो रियाल निकाल लेती थी, फिर उसमें से उसको गिन के देना, फिर माशाल्लाह से बुढ़ापे का असर है तो आंखें भी कमजोर है, अच्छा जी तुमने कितना 10 रियाल माना है, तो अच्छा अब ये क्या है, तो वो मेरा बेटा कहता था मम्मा आप सारे पैसे क्यों निकाल लेती हो, मैंने कहा कोई बात नहीं है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ,
नहीं नहीं वहाँ कुछ नहीं,
ये कुछ नहीं है ऐसा,
तो वो सभी
कानून ऐसा है ना,
सकता
ये कानून है। अब आप कहते हैं ओ जी उधर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, भाई जुल्म नहीं हो रहा, उनका एक कानून है, उन्होंने अपने मुल्क में एक तरीका रखा हुआ है, ये आपको मैं आज की रिपोर्ट दिखा, यानी कि मैं और तुम, हमारी और तुम्हारी क्या औकात है आमिर, प्रिंसेस कतारी प्रिंसेस उसके ऊपर आपने डाका मार लिया यार फ्रांस,
हाँ वो आपने खबर सुनाई,
अब सोचो और ये भी नहीं, अच्छा ये है ना जैसे ये मेरे हाथ में, अच्छा जी ये तो आपने काटा, ये तो छोटी सी चीज है जेब में रखा, कहीं भी आप रख लेंगे, ये तो मिलेगी भी नहीं, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसकी ज्वेलरी और सारा कुछ, और पता ही नहीं चल रहा वो कौन चोरी करके ले गया, और वो है वो कोई इतनी सी चीज है, 11 पर्स अहमद के, उसके अंदर घड़ियां और ज्वेलरी,
लेकिन कसूर उनका है ना, वो 11 पर्स लेके घूम रही है,
वो यार प्रिंसेस है ना, वो उसने हर दफा जब अपियर होना था तो उसने भी
एक लेना था अलग अलग,
अलग पर्स लेना था, अलग ज्वेलरी पहननी थी कपड़ों के साथ में, तो ऐसा है ना,
ये तो है मसला,
तो वो है ना, तो वो तो अब ये तो तुम वो बात कर रहे हो ना कि मुकेश अंबानी की बीवी जो है वो 100 रुपए की साड़ी पहन के आ जाए, अब ये तो नहीं होगा ना भाई जान,
भाई मैं इस चीज पे बिलीव ही नहीं रखता कि भाई वो क्यों पहने 100 डॉलर की साड़ी,
डॉलर नहीं 100 रुपए,
अच्छा 100 रुपए भी कर, 100 रुपए भी वो क्यों पहने,
तो अब ये तो देखो ना, ये तो तुम अन्नी पाई हुई है, अब उधर इंग्लैंड में आप आज देखें क्या हो रहा है वहां पे और ये जगहों पे, ये आप यूके के अंदर वो जो बच्चे बेचारे मार दिए हैं, हाँ
बुरा हाल है,
और वो हाँ आप देखो जर्मनी के अंदर थोड़े दिन पहले वो जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे क्या, तो भाई ये कानून मिडल ईस्ट में आप देख लो, यूएई में आप देख लें, बहरेन में आप, कतर में देख लें, आप जितनी मर्जी ज्वेलरी पहन के रात के 2 बजे फिर रहे हैं, मजाल के आपको कोई हाथ लगा जाए,
या आप कराची में भी घूम के घूम सकती
बस मोबाइल जरूर साथ रखें
नहीं नहीं मोबाइल है, आप कोई भी अच्छा मोबाइल अपने पास रखें आईफोन का और जो भी ज्वेलरी आपने पहनी थी वो आप पहन के घूम, लेकिन घूमने का माना नहीं है ये आप बात को समझें, इसमें घूमने का आप महंगी से महंगी गाड़ी में बैठे और वो क्या 11 की जगह 12 पर्स ले लें, इस पे कोई कुछ नहीं कहेगा,
कुछ नहीं कहेगा, अच्छा
कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि वो कहता ही नहीं है, वो तो दिखाते हैं।
अच्छा हमें एक बड़ा प्यारा गाना है उसकी ना, वो जो है अक्षय कुमार की फिल्म आने वाली है एक, उसका वो गाना है हॉली हॉली, भाई वो आप सुने, वो इतना कोई मजे का इंटरेस्टिंग गाना है, उसके अंदर 3 हीरो है वो, अच्छा उसके अंदर आपको फरदीन खान भी नजर आएगा, अभी आपको पता है जो अभी रिसेंटली हीरा मंडी भी आई थी संजय लीला भंसारी की, उसमें बड़े अरसे के बाद, वरना आपको पता है फरदीन खान बड़े ड्रग्स में चला गया था और बेतहाशा मोटा हो गया था, अब आप पूछेंगे फरदीन खान कौन है, फिरोज खान का बेटा, राइट, तो वो इंतहाई ट्रिम स्लिम हो गया है, पहले तो वो हीरा मंडी में उसको लेकर आए, अब वो जो वेब सीरीज थी और अब ये जो एक फिल्म है ये जो आ रही है अक्षय कुमार की, उसके अंदर ये गाना है हॉली हॉली, तो उसमें 3 लड़के हैं, तो उसमें जो है एक फरदीन खान भी है, तो आप देखें जरा उस लड़के की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, और उसके अंदर जो है वो आपको नजर आएंगी और भी कुछ हीरोइंस जो हैं वो नजर आएंगी, तो आप देखें और एंजॉय का मजा लें। और इतना कोई वो प्यारा गाना है, मैं तो उसकी देख रही थी वो जो उसको अक्षय कुमार को, उसकी भी एज देखें, कोई छोटी एज नहीं है, और जिस तरह वो नाच रहा है जैसे वो कहते हैं ना कि हाँ। तोड़ नहीं ना लक वे इस तरह करके, ओ माई गॉड क्या झटके और वो दे रहे हैं, और मैं देख रही थी उसको कितना फिट है। अच्छा इस फिल्म के अंदर ना आमिर हाँ। उसने अपने बाल काले नहीं रखे, इस फिल्म में उसने अपने बाल व्हाइट करने
के
लिए, इतना कोई अक्षय कुमार हैंडसम लग रहा है और आर्टिस्टिक लग रहा है। आप इस फिल्म में उसको देखें, व्हाइट है उसके बाल, और मेरा ख्याल है आई वाज सेइंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम कि अक्षय कुमार को अब अपनी एज के हिसाब से जो है ना रोल्स करने चाहिए, बहुत छोटी हीरोइंस के साथ और इस तरह आके आप उसको, ही शुड लुक हिज एज, जैसे कि हम बड़े अरसे से पाकिस्तान के जो है वो हुमायूं सईद के बारे में भी कह रहे हैं कि अब उनको वालिद साहब का रोल कर लेना चाहिए, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं यंगर हीरोइन देता हूं। ये इसने जो है इस दफा अक्षय कुमार को आप देखेंगे कि व्हाइट बाल हैं और बड़ा ही हैंडसम लग रहा है। गाना सुने जरा,
गाना लगा लिया जनाब हॉली हॉली, और ये मूवी है खेल खेल में।
हाँ खेल खेल,
आई होप कि गाना आपको जो है वो पसंद आएगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, हमसे जुड़ने का नंबर 4166201778, 4166201778 हमारा नंबर है।
मोटी मोटी अख तेरी घर दी सवाल, टेडा टेडा थके हुई जांदा बुरा हाल, कच दा शरीर तेरा करदा कमाल, ये तू मायना करे मैं करा टचनी, तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी, एवे तोड़ के ना बैजनी तू लकनी, तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी, एवे तोड़ के ना बैजनी तू लकनी, तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी। तेरा हुसन तबाही लगे गल्ला तो तू चंडी गड़वाई, हो जीवे मुन कर शाइन तेरा रंग नी, तेनू वेख वेख हो गया मैं हाई, तेरे बारे सारी अफवाहां बिल्लू सच नी, तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी, एवें तोड़ के ना बैठी नी तू लकनी, तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी। ओ तेरे जेह लखां फिर दे मैं दिल ना किसे दे नाले लाउंदी, तेरे जेह लखां फिर दे मैं दिल ना किसे दे नाले लाउंदी, ओवी जी जी लैना मुंडिया नाना हथ ना किसे दे ना मैं आउंदी, ओवी जी जी लैना मुंडिया नाना हथ ना किसे दे आउंदी, प्लीज दिल मैनू दे ओ ओ ओ, रब कोल थोड़ा जा डरो ओ ओ, साडे ते भी थोड़ा जा मरो ओ ओ, तेरी मेरी जोड़ी हाय तू मचनी, तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी, एवें तोड़ के ना बैजनी तू लकनी, तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी, एवें तोड़ के ना बैजनी तू लकनी, तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी, एवें तोड़ के ना बैजनी तू लकनी, तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी, एवें तोड़ के ना बैजनी तू लकनी, तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी।
आज मेरी वाइफ की इकलौती बहन की शादी के लिए मैं जयपुर में था, फ्लाइट मिस हो जाती तो वो औरत इस एक बात का इशू बना के हमारी शादीशुदा जिंदगी में अनेक
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही बेटी की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। पायल ज्वेलर्स के असलम भाई को कॉल करें ना एट 9057907879, दैट इज 9057907879।
पाई सस्ता ला ला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला। ओहो सल्ला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए है जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप, नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटां, बाटियां सब कुछ मिलदा। साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दियां ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਏਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828, 905-450-2828.
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
अरे खैरियत तो है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कहाँ की तैयारी है?
हमारी पूरी फैमिली दूसरे शहर मूव हो रही है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये मूविंग होगी।
आप परेशान ना हो, आपकी मूविंग का सिर्फ एक ही हल है, 786 मूविंग प्लस।
अच्छा, वो कैसे?
786 मूविंग प्लस वाले अपार्टमेंट, हाउस, ऑफिस, स्टोरेज और कमर्शियल मूविंग में स्पेशलाइज करते हैं। मूविंग एंड डिलीवरी, पैकिंग एंड अनपैकिंग, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस, 24 आवर सर्विस, 7 डेज अ वीक, आवरली एंड फ्लैट रेट।
आपने तो हमारी मूविंग ही आसान कर दी, फौरन 786 मूविंग प्लस का नंबर दें।
जी जी बिल्कुल, 786 प्लस मूविंग के अमीन को आज ही कॉल कीजिए, 416-786-6000, 416-786-6000।
वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साज़ो आवाज़, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और मेरे साथ हैं शाज़िया मलिक। जनाब, हम अगले घंटे में यानी जब टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेंगे तो उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि टेलीफोन लाइंस खोल दें और आप हमें कॉल भी कर लें तो फिर हम आपकी कॉल प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। 8 बजे के बाद 9 बजे तक आपका हमारा जो है सिलसिला जारी रहेगा और अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहां आपको ये सुरीली आवाज़ सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक नंबर डायल कीजिए 6478-7249। भाई लोग नहीं छोड़ दें सब, ये आप खींची आपको हंसी आ रही होगी लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रॉब्लम ना लें। 6478-7249 डायल करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर आवाज हमारी सुनाई देगी। चलें जनाब, कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम भी प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। धर्म समर फेस्ट होने जा रहा है जनाब, बिल्कुल धर्म में, धर्म रीजन में ये फेस्ट होने जा रहा है, समर फेस्ट 2024। 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये 2 दिन का इवेंट है और 500 विक्टोरिया स्ट्रीट वेस्ट, विटबी इसका एड्रेस है। बिल्कुल जो विटबी गो स्टेशन है, पार्किंग वो कहते हैं, अगर आप विटबी गो स्टेशन के पास पहुंचते हैं तो वही पार्किंग जो है आपको वहां मिलेगी, फ्री पार्किंग है, इसका कोई टिकट नहीं है। और 31 अगस्त को लाइव कॉन्सर्ट होने जा रहा है अहमद जहांजेब, और वो लाइव परफॉर्मेंस आपको देंगे 31 अगस्त को। 1 सितंबर को लाइव गजल कॉन्सर्ट होगा जिसे मौजम अली खान ट्रिब्यूट देंगे जगजीत सिंह साहब को। तो आपने पूरी फैमिली के साथ यहां पहुंचना है 31 अगस्त और 1 सितंबर को दोपहर 1 से लेकर रात तकरीबन 11-12 बजे तक ये रंगारंग प्रोग्राम चलता रहेगा। यहां फूड स्टॉल्स होंगे, बच्चों के लिए राइड्स होंगी, जंपिंग कैसल्स होंगे और बहुत सारा फन आपको धर्म समर फेस्ट 2024 में मिलेगा। अगर आपने कोई स्टॉल बुक कराना है या स्पॉन्सरशिप्स के लिए कोई कॉन्टेक्ट करना है तो हम आपको एक नंबर देते हैं 416-897-1683 पर आप अगर कोई स्टॉल बुक कराना चाहते हैं तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब, आपको पता है कि समर टाइम पे अक्सर बेशतर लोग मूविंग करते हैं, यानी घर की शिफ्टिंग है, अपार्टमेंट की शिफ्टिंग है या ऑफिस की शिफ्टिंग है या कोई और कमर्शियल शिफ्टिंग है, तो हम आपको एक नाम देते हैं 786 मूविंग प्लस। और यहां होते हैं अमीन साहब, 416-786-6000। और वो कहते हैं कि 24 आवर्स आपको 7 डेज अ वीक ये सर्विस देंगे और कहते हैं कि अगर आपने आवर्ली रेट्स हमसे फिक्स करने हैं तो हम आवर्ली रेट्स पर भी काम कर लेंगे, इसके अलावा फ्लैट रेट्स पर भी काम कर लेंगे। वो कहते हैं अगर आपका कोई इम्पोर्टेड फर्नीचर है तो उसको भी फ्री श्रिंक रैप करके देंगे, क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग मूविंग आपका जो फर्नीचर है वो अक्सर और बेशतर डैमेज हो जाता है, उसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम आपको फ्री श्रिंक रैप जो है आपके फर्नीचर्स पर करके देंगे। तो 786 मूविंग प्लस अमीन साहब, और इनका नंबर 416-786-6000, 416-786-6000 इनका नंबर है। इसके अलावा आपको नंबर देते हैं जनाब मलिक लॉ ऑफिस, बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर हैं मोहम्मद अतीक मलिक। वो कहते हैं कि अगर आपकी खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई डाइवोर्स के इश्यूज हैं, या आपने अब तक अपनी विल नहीं बनवाई, आपकी कोई रियल एस्टेट की क्लोजिंग आ रही है और आप अच्छा लॉयर ढूंढ रहे हैं, तो आप एक बार जरूर मोहम्मद अतीक मलिक को कॉल कीजिए। मलिक लॉ ऑफिस बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर मोहम्मद अतीक मलिक, और इनका नंबर है 905-291-4455, 905-291-4455, बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर मोहम्मद अतीक मलिक साहब का नंबर है। ऐसा करते हैं कि कुछ गाना प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं छोटा सा, लेकिन टॉप ऑफ द आवर का वक्त भी जो है वो करीब आ गया है, और ऐसा करते हैं कि जाहिर है आपकी कॉल्स अभी मेरे पास आ रही थी, मैंने कॉल्स नहीं रिसीव की क्योंकि मैंने कहा ये स्पॉन्सर्स के दे दें,
जान बुझ के तुमने नहीं की, तुमने कहा ओहो इन्होंने कहा मेरी सुरीली आवाज मत सुनो तो मैं इनकी तरह की चीज मैं दबा देता हूँ,
बात ये नहीं थी। अरे भाई
आमिर 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 प्लीज मैं समझ
लेकिन ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, ठीक है, रिकॉर्ड हो गया जो भी रिकॉर्ड, मैंने ये अर्ज किया था, गुजारिश की थी कि अगला एक घंटा यानी हम 9 बजे तक तो सिलसिला प्यार मोहब्बत का चलता ही रहेगा, ये हमारा सामयिक का नाज़रीन
कौन सा प्यार और कौन सी मोहब्बत और किसके साथ और क्यों और वाय
पूरा सुना वाय वाय प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलता रहेगा हमारे सामयिक के साथ, हमारे नाज़रीन के साथ, आपके साथ नहीं,
वो तो सही है,
वो तो इस अंडरस्टूड पे दोस्त
अंडरस्टूड पे दोस्त
वो तो नहीं चलने वाला। तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम आखिरी एक घंटा, क्योंकि अभी कॉल आ रही थी अभी मेरे पास, हम 8 से लेके यानी अब टॉप ऑफ द आवर का एक ब्रेक ले लेते हैं और आप जाके थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर लीजिएगा,
अच्छा अच्छा,
क्योंकि अभी इस पे कॉल्स आएंगी,
अच्छा,
तो कुछ फायरिंग भी होगी,
हाँ,
तो वो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाती है सम टाइम आप।
अच्छा आमिर मैंने वैसे ये एक चीज देखा, तुम इतने कोई जो है ना गंदे इंसान हो, तुम जो है फ्राइडे को तो बड़ी ब्राइट शर्टें तुम पहन के जाते हो, जब मेरे साथ प्रोग्राम करने आते हो तो काले रंग की शर्ट पहन आते हो, वो कितने खराब आदमी हो तुम यार।
लेकिन मैंने आपसे वैसे आप बातों को नोट नहीं करती,
बातों को नोट किया तो मैंने तुम्हें
फ्राइडे होता है फील लाइक शाहरुख खान भूल जाती हैं समझ नहीं बात देखा और मंडे तो ऐसा दिल करता है कि ये मंडे आए ही नहीं, ट्यूजडे आए डाय
फ्लाई करता है ट्यूजडे में लैंडिंग ले,
हाँ संडे के बाद मुझे मंडे बिल्कुल पसंद नहीं,
बिल्कुल नहीं पसंद है वैसे मेरी
बात, उसका मैं शोक मनाता हूँ,
हाँ उसका शोक मनाते हैं। अच्छा मेरा वैसे ख्याल है कि अब हमारे पास 2 घंटे है ना ये, जरा आओ एक एडवोकेसी ग्रुप चलाएं, जरा फोर्ट साहब को कहें, फोर्ट साहब अगर आप हम दुखियारियों को देख रहे हैं तो आप हम जैसे बूढ़े लोगों के लिए, आमिर तो नहीं आमिर तो जवान है, आमिर को तो आप 6 डेज करें, हमारे बूढ़े लोगों के लिए 4 डे वर्क वीक करें यार, बूढ़ी हड्डियों को जरा आराम मिले थोड़ा सा,
ठीक है फिर क्या होगा?
ठीक है फिर बस थोड़े अरसे के बाद तुम्हारी भी किस्मत बदल जाएगी, तुम भी हमारी ब्रैकेट में आ जाओगे, फिर तुम्हारा भी 4 डे वर्क वीक आ जाएगा।
वो कहते हैं ना कि जो काम आपने 5 दिनों में नहीं करना वो 4 दिन में भी नहीं होगा
लेकिन देखो लेकिन मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी फीलिंग,
नहीं मेरी फिक्र ना करें,
नहीं नहीं आमिर
मेरे तो मेरे लिए तो मेरे लिए तो इम्तिहान ही है ये कि मैं आपके साथ काम करूं,
हाँ हाँ इम्तिहान है लेकिन तुम मेरे
लिए, मैंने और ताहिर भाई ने तो अलग ही जाना है ना,
लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए देखो कितनी अच्छी है,
मुझे
मैं लोगों को क्या कह रही हूँ कि जो काम आमिर 5 दिन में नहीं कर सकेगा ना वो 6 दिन में कर लेगा,
और आप
जो 5 दिन में नहीं कर रही वो 4 दिन
में, 4 में भी नहीं होगा,
हाँ वो तुम ये कह रहे हो और मैं देखो कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना तुम्हारा ख्याल करके तुम्हारे लिए कितनी अच्छी बात कर रही हूँ कि देखो जी कोई बात नहीं आमिर ने अगर 5 दिन काम नहीं किया ना छठे दिन
कर साहब को अंदाजा है इस चीज का,
हाँ हाँ वही वही,
क्योंकि वो बेसिकली सिर्फ न्यूज ही है,
अच्छा
बाकी तो आप देख लें, मतलब मुझे ओपन,
हाँ ओपन माइक पे
ओपन माइक कैफे का आपने जिक्र कर दिया है तो अब ओपन माइक कैफे जो है उनका जिक्र करना ही पड़ जाएगा,
नहीं नहीं जरूरी
ना
नहीं
है,
तो फिर भी फ्री खाना नहीं मिलेगा, नहीं, नहीं। आप अगर आप सुन रहे हो उसको बिल्कुल फ्री खाना ना देना,
माइक कैफे जाइए जनाब और मजेदार खाना जो है वो एंजॉय कीजिए, और उनका एड्रेस है 1310 Dundas Street Unit 3 मिसिसागा में ओपन माइक एंड कैफे, जनाब जाइए बहुत ही जबरदस्त किस्म का खाना आपको वहां मिलेगा, चाहे बारबेक्यू खाएं या कढ़ाई खाएं फिश खाएं किसी भी किस्म का आपको जो पसंद है वो जाके एक बार जरूर ओपन माइक कैफे ट्राई करें। चले जनाब टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। हमारा नंबर 4166201778 आपकी कॉल का सिलसिला शुरू करेंगे और तकरीबन हम 8:30 बजे तक और 9:45 बजे तक 8:30 तक कॉल से रखेंगे। फिर क्योंकि मगरिब का टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है तो फिर हम मगरिब का आखिरी सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो 8 to 8:30 आपके लिए लाइंस ओपन है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, कोई बात करना चाहें तो 4166201778 हमारा नंबर है। टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक, फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ब्रैम्पटन सड़कां फुटपाथां अते बस स्टॉप दे सर्दियां दे रख रखाव दे कॉन्ट्रैक्ट दा नवीकरण करन जा रहा है अते ए जानना चाहुंदा है कि शहर दे निवासी इन्हां सेवावां दा भुगतान करन लई तैयार हन। परिणाम स्वरूप निवासियां दे लई टैक्सस वध सकदे ने पर सारियां परिवारां नूं इह सेवा दा लाभ नहीं मिल सकदा। सारे फुटपाथां नूं साफ करन लई सालाना $2.6 मिलियन दा खर्चा आउंदा है। ड्राइववे तों बर्फ साफ करन लई इस दी कीमत $19.6 मिलियन प्रति साल होवेगी। ते अपने सुझाव देण लई अज ही विजिट करो brampton.ca/engage।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ओंटारियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519622